गोवर्धन पूजा, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था और पूरे वृंदावन को, पूरे वृंदावन के वासियों की रक्षा करी थी। यही मनाया कि एक ऐसी छतरी, एक ऐसी छत भगवान ने बनाई जिसमें पूरा वृंदावन समा गया, और भगवान के भक्त ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व समा गया, है ना। बोलते हैं प्रभुपाद जी के लिए कि प्रभुपाद हैज अ बेटर, सच अ नाइस होम वेयर होल वर्ल्ड कैन स्टे, आराम से आ जाता है। तो प्रभुपाद की छतरी ज्यादा बड़ी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने बोर्ड पर दो श्लोक लिखे हैं, आप हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ना ही सद्भाव युक्ता सुरनामेश विस्मया मतो सतामान भंगम प्रशमायोपकल्पते। धन्यवाद। इसका जो है अनुवाद इस प्रकार है, पहला जो 17 श्लोक है, चूंकि देवता सतोगुण से युक्त होते हैं अतः अपने को स्वामी मानने का मिथ्या अभिमान उनमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब मैं सतोगुण से विहीन उनके मिथ्या अभिमान को भंग करता हूं तो मेरा उद्देश्य उन्हें राहत दिलाना होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अगले श्लोक में वहां कहते हैं, अतएव मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोप समुदाय की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि मैं ही उनका आश्रय हूं, मैं ही उनका स्वामी हूं और वे मेरे अपने परिवार के ही हैं। मैंने अपने भक्तों की रक्षा का व्रत जो ले रखा है, तो जैसे कि इस अध्याय का नाम है कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण, और आज वही दिन है गोवर्धन पूजा का, तो बहुत ही सुंदर जो है प्रसंग है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में, कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है जब वचन देते हैं ब्रह्मा जी को कि मैं वृंदावन में अवतरित होने वाला हूं और आप जाओ सभी देवताओं को कह दो कि आप सब जो है वहां पर आकर अवतरित हो जाएं, तो भगवान की लीला में सहयोग करते हैं ये देवता। और भगवान यहां बता रहे हैं कि सब सतोगुण में रहने वाले लोग हैं, देवता लोग सतोगुण में रहते हैं, लेकिन फिर भी जब जब इनके अंदर अहंकार क्रोध इस प्रकार के रजोगुण के भी सिम्टम्स प्रकट होते हैं तो भगवान अपने भक्तों के इस प्रकार के अवगुणों को दूर करने का भी प्रयास करते हैं, और ऐसा प्रयास होता है जो कि 100% ठीक ही होता है। तो यहां पर इस पूरी कथा में भगवान श्री कृष्ण का, बलराम का जब अपने पिता नंद महाराज के सामने आना और उनसे कहना कि आज ये सब तैयारी किस लिए चल रही है, यहां तो ठीक चल रही है लेकिन वहां पर तैयारी कुछ और चल रही है। सब लोग जो है घर से मिष्ठान पकवान इत्यादि बना रहे थे और एक बड़े यज्ञ की जो है तैयारी हो रही थी, और बड़ा सुंदर प्रसंग है कि नंद महाराज से पूछ रहे हैं और बड़े सुंदर तर्क के साथ पूछ रहे हैं। कृष्ण जो है बड़े छोटे हैं, 7 साल के बालक हैं, और अपने वाक पटुता के द्वारा वो किस प्रकार प्रश्नों के जाल में और तर्क के जाल में अपने पिताजी को फंसाते और बोलते हैं कि क्यों कर रहे हो, इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या उद्देश्य, इसे क्या फल की प्राप्ति होती है, ऐसे ही तो नहीं कर रहे कि मतलब रिचुअल चल रहा है। नंद महाराज कहते हैं ठीक है, बताने की कोशिश भी करते हैं, उनको लगता है बच्चा है ज्यादा डिटेल क्या बताने, वो फिर पूछते हैं कि नहीं नहीं पूरा बताइए कि ऐसे रिचुअल है या कहीं शास्त्रिक है या, तो उनको बताना पड़ता है। कहते हैं हम लोग ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं, बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र जो है हमें वर्षा प्रदान करते हैं, वर्षा से सारी जगह जल आता है और उसी से हम लोग खेती करते हैं, अन्न इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो इंद्र के लिए करते हैं। भगवान ने फिर तर्क दिया, वैसे तो भगवान भगवत गीता में सबको बता चुके हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है अल्पमय दशा, उनको अल्पमय दशा कहते हैं, कम बुद्धि वाले समझ ही नहीं है, छोटी छोटी चीजें मानते। अभी भगवान ने तर्क दिया कि भाई इंद्र की पूजा समुद्र थोड़ी कर रहा है, ये वो स्थान थोड़ी कर रहे हैं जहां पर बरसात का पानी गिरता है, तो हमें भी करने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने बड़े सुंदर तर्कों से अपने पिता को स्पीचलेस कर दिया और आसपास खड़े सभी लोगों ने कहा बात तो ठीक कर रहे हैं। तो कहते किसी करनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा अगर पूजा करनी भी है, इतनी बड़ी सामग्री इत्यादि ऑफर करना ही है, तो किसको करो, गोवर्धन को करो। तो क्योंकि गोवर्धन जो है हमें जड़ी बूटियां देता है, हमारी गायें जो है वहां पर जाके घास चरती है, उन गायें के दूध से हम लोग उसका सेवन करते हैं, सारी चीजें बनती है, खुशहाली उन्हीं वजह से। तो कहते ठीक है ऐसा करें। और गोवर्धन की जैसे हम कथा भी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मैं नाम बोल रहा हूँ ऋषि जी ना, कौन से मुनि थे जो गोवर्धन को लेकर आते उनके माता पिता से मांगकर, पुलत से मुनि शायद, नहीं अगस्त से नहीं पुलत से, तो पर्वत को लेकर आते हैं और वो उनकी शर्त ये होती है कि मैं तभी चलूंगा जब इसी शर्त पे कि आप मुझे कहीं रखेंगे नहीं। वो उनको ले जाना चाहते थे काशी, क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है, वहां पर दुनिया आती है ना, और लोग पिंडदान इत्यादि करते हैं। तो बीच में उनको शंका के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने पर्वत को नीचे रख दिया और जब वापस आए तो गोवर्धन प्रभु ने मना कर दिया कि हम नहीं चलेंगे आपके साथ, क्योंकि आपने रख दिया हम। और फिर उनको क्रोध चढ़ा कि मैं जहां ले जा रहा था तुम तो बीच में ही उतर गए, तो उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप था कि तुम एक तिल के दाने के बराबर रोज तुम्हारा क्षय होगा, मतलब तुम नीचे जाओगे। तो तब से हम देखते हैं, हमें तो क्या नहीं दिखेगा, हमें तिल तिल जमीन तो पर आती नजर आएगी है ना, हमको लगेगा सड़क बन गई आसपास ऐसा हो गया, लेकिन वास्तव में यह पर्वत नीचे जा रहा है। और यह आध्यात्मिक जगत से भी इसका संबंध है, और स्वयं ये भक्त भी है और भगवान भी है, क्योंकि जब पूजा करने के लिए कहा और सब लोगों ने की पूजा के अधिकारी, भगवान ने विधि भी बताई कि इसकी पूजा कैसे करनी है, तो इसी चैप्टर में आ गया है। तो इस प्रकार जो है गोवर्धन वहां स्थापित हुए और इनकी पूजा अर्चना उसकी इस कथा के बाद शुरू हुई। लेकिन बीच में क्या था कि जब इंद्र ने देखा कि मेरे को लगने वाली ऑफरिंग, मुझे जो पूजा होती है, जो मुझे लोग सब चढ़ाते हैं, अब ये सारी चीज क्या हो गई, कहां जा रही है, गोवर्धन के लिए जा रही है। तो इंद्र को इतना मतलब क्रोध आया कि एक छोटा सा बालक कृष्णा नाम का, मेरे सारे के सारे बच्चे के कहने पर पूरे के पूरे गांव वालों ने मतलब सब कुछ बदल डाला, और इतने समय से चल रही थी पूजा, तो नेचुरली क्रोध तो आना था है ना। तो यहां पर बताते हैं कि ये बहुत सीधा सिद्धांत है जो भगवत गीता में भगवान ने दिया है, ध्याय तो विशान पुंसा संगात से शुभ जाए थे, संगात संजाए थे काम काम क्रोध भी जाए थे। क्यों आता है क्रोध, क्योंकि जिन चीजों से हमारी आसक्ति होती है, जिन चीजों का हमें लगता है कि हाँ ये मेरे भोग के लिए बनी है, ये तो मुझे रोज मिलती है, इस पे मेरा अधिकार है, और जब उस चीज में कमी आ जाए या वो चीज हटा ली जाए तो क्रोध आता है। और क्रोध बताते हैं कि ये तीन द्वार हैं, कहां के, नर्क, तो उसमें से एक ये भी है, मतलब जिसके पास ये है इसकी अधिकता है, और जो इसका सेवन करता है क्रोध का, जिसका ये आभूषण है, तो उसके लिए नर्क के द्वार खुले हुए। हमें गुण लगता है ये कि मैंने गुस्से में उसको डरा दिया, देखो मैंने उसको डांट लगाई गुस्से में, है ना, ये आभूषण नहीं है, क्या है ये, नर्क का द्वार है। तो इतना क्रोध चढ़ा क्योंकि उनकी पूजा को पूरी ऑफरिंग्स को डाइवर्ट कर दिया गोवर्धन की तरफ, और उस क्रोध के वश में आकर है ना उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उन बादलों को बुलाया जो कि प्रलय के समय यूज होते हैं, समझ वो उनको बोलते हैं संवर्तक, कहते हैं इतनी खतरनाक वर्षा करते हैं वो कि उसकी एक एक बूंद खंभे के बराबर होती है पानी की। अगर आप किसी छत के ऊपर से किसी को बाल्टी पानी भी गिराएं तो उसको बहुत तेज लगेगा, और ये पानी तो बहुत ऊंचाई से आता है। तो इतने खतरनाक बादलों का इस्तेमाल किया जो कि प्रलय के समय इस्तेमाल होते हैं, और पूरे के पूरे वृंदावन को उन्होंने डुबोने की कोशिश करी। इतने क्रोध में थे, क्रोध ने कभी भी किसी का भला नहीं किया। और बताते हैं एक बार गौतम बुद्ध कहीं प्रवचन कर रहे थे और इसी चीज से चर्चा चल रही थी, क्रोध नहीं करना चाहिए, मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है क्रोध। तो एक व्यक्ति को बड़ा मुश्किल लगा ये सुनकर, क्योंकि हर स्तर के लोग होते हैं प्रवचन में ना, तो सात्विक लोगों को तो बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ बिल्कुल गलत चीज है, इसका तो देखना, इसके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो जो रात से जिनके अंदर अधिकता होती है उनको लगा भी कैसे कैसे हो सकता है, क्रोध तो किसी का भी खत्म हो सकता। तो वो व्यक्ति बोल गया बीच में, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसी बातें मत करो जो हो ही नहीं सकती। एक रजोगुणी व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है, और एक सात्विक व्यक्ति के लिए उसके लिए ठीक है ना, हाँ ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए, वो हमेशा पीसफुल शांत, इधर मारा इधर भी मार लो, है ना, उस तरह से। तो उसने उनकी बेइज्जती करी, उनको खुद बोला, और यहां तक कि उनके मुंह पर थूक दिया और शांत बैठे रहे। अगले दिन वो वहां से शांत छोड़ के कहीं और गांव में चले गए प्रवचन करने के लिए, और वो व्यक्ति जो इतने क्रोध में आके, लेक्चर में क्रोध में आकर ये सब कर गया, रात तक उसको मन शांत हुआ, क्रोध शांत हुआ, तब उसको लगा कि मैं तो बहुत बड़ी गलती कर ली है ना। क्रोध में व्यक्ति जब कुछ कर देता है तो उस समय तो उसको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं जो कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जितनी ऊंची आवाज में बोल रहा हूं सब ठीक है। उसको परिस्थितियां ऐसा अनुकूल कर देती हैं कि उसको 100% अपनी ही सारी चीज ठीक लगती है, अपने को सर्टिफिकेट दे चुका होगा कि मतलब ये तो बनता है मुझे इतना क्रोध करना, हाथ उठाना या मारना जान से, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं और इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया है इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कोई घटना घट जाती है, उस घटना के घटने के कुछ समय बाद जब रजोगुण धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है, तो फिर वो व्यक्ति सोचता है कि वो जो क्रोध के समय आकर जो मैंने करा कितना गलत किया, और तब उसको पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, और उसका रिएक्शन जो है कितना खतरनाक हो गया, उसके कितना तेज चिल्लाता है उस समय, सारे संबंध भूल जाता है। किसी ने बोला कि लोग क्रोध में इतना चिल्लाते क्यों हैं, तो उन्होंने बोला क्रोध में व्यक्ति इसलिए इतना चिल्लाता है क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने वो बात कर रहा है वो उससे बहुत दूर हो चुका होता है। कहते लेकिन आदमी तो पास ही होता है, उसको प्यार से बोल सकता है, सामने खड़ा है। नहीं नहीं, रजोगुण की वजह से क्रोध इतना बढ़ चुका है कि उसके आपसी संबंध अब दूरी में बदल गए, और अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को प्रभावी रूप से रखने के लिए, क्योंकि दोनों के दिल दूर हो चुके हैं, संबंध दूर हो चुका है, वो खूब तेज चिल्लाता है, सुनते नहीं हो क्या तो मैं कहीं नहीं बोल रहा। और इस प्रकार वो अपनी बात रखते हैं, दोनों व्यक्ति ऐसी बात रखते हैं क्रोध में, गुस्से में, आंखें लाल मारने पीटने की परिस्थिति। और जिन लोगों के संबंध अच्छे होते हैं, जहां क्रोध नहीं होता वहां क्या होता है, कम्युनिकेशन किस तरह होता है, वहां बातचीत करते हैं बड़े प्यार से, और कई जगह तो बहुत अच्छे संबंध होने पर बातचीत की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल गर्दन हिला के काम हो जाता है। कई जगहों में तो गर्दन भी नहीं हिलाई जाती, कई जगहों पर भौंहें हिला कर आंखें हिला कर व्यक्ति समझ जाता है, और कई जगहों पर तो आंखें भी नहीं हिलाई जाती, जहां और अधिक प्रेम होता है वहां क्या होता है, हाँ हृदय से हृदय, क्योंकि बिल्कुल नजदीक है तो उसके हृदय की बात को व्यक्ति पूरी कर देते हैं। लेकिन जहां पर ये सब चीज नहीं है, जो बिल्कुल हृदय से हृदय था और आपस में किसी कारणवश क्रोध बढ़ रहा है, तो क्या होता है, फिर दुनिया बढ़ती जाती है, आवाज बढ़ती जाती है, हाथ आंख हम सब इधर उधर हो जाता है और फिर उच्च स्वर में बातचीत चलती है। तो यहां पर उस व्यक्ति ने जो बोला उसको भी पश्चाताप हुआ और फिर वो पश्चाताप कर रहा था और वो ढूंढने लगा माफी बुद्ध को। फिर पता चला उस गांव में, तो वहां गए, वहां जाके फिर उन्होंने उनसे माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो। कहते कौन हो तुम? कहते कौन, मुझे बोल गए, मैं वही जो कल इतना बड़ा घृणित काम किया, आपके ऊपर थूक फेंक कर आ गया। उन्होंने बोला अच्छा, बट मैं तो भूल चुका हूं ये बात। कहते भूल चुके हो? अरे कल की तो बात है। कहते भैया एक दिन पुरानी बात है और मैं उसको याद करके मैं अपना आज क्यों खराब करूं? तो तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बात कल हो गई उसको मैं दिल से मत लगा, समझे? हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम कुछ कर देते हैं पश्चाताप के रूप में तो ठीक है, क्षमा मांगने के रूप में भी ठीक है, लेकिन कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला था, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, पूरा जीवन जो है सेवा करने के बाद क्या बोला गया आदमी में कि आपने लिए मेरे किया ही किया है, तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता, दुखी हो जाता और संबंध हमेशा के लिए टूट जाते हैं। तो इस प्रकार जो क्रोध है कभी भी किसी का भी हितेशी नहीं रहता। क्रोध को हनुमान जी ने जगाया था लेकिन वो पूरा ज्ञान कहते ना, ज्ञान के साथ क्रोध था उनका, उनको मालूम था मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं और कितना कर रहा हूं। क्या तो बहुत कुछ सकते थे वो अयोध्या में, लंका भी जला सकते थे, रावण को भी खत्म कर सकते, पता नहीं क्या क्या कर देते, है ना, लेकिन उनको मालूम था कि कितना दिखाना है, कितनी डिग्री का दिखाना है। माता पिता भी भक्तों के भक्तों भी दिखाते हैं क्रोध, लेकिन उनको मालूम है कहां दिखाना है, कितना दिखाना है, उसे कितना प्रयोग करना है ताकि सामने वाले का फायदा हो सके। तो इस प्रकार क्रोध जो है, जो क्योंकि रजोगुण का एक रिप्रेजेंटेटिव है ये, हाँ, तो इसका उपयोग भक्त लोग जानते हैं कैसे करना है। हम लोग जब करते हैं तो हमारा जो क्रोध है, कई बार हम बोलते हैं कि नहीं हम भी तो भक्त हैं, हम भी तो अच्छा क्रोध कर रहे हैं, हम तो उसके फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अपना इंटरेस्ट होता है किसी ना किसी चीज को लेकर और फिर हम उसको कवर करते हैं फिलोसफी के साथ, कवर करते हैं अपनी सेवा के साथ, कवर करते हैं परिस्थितियों के साथ कि मैंने इसलिए क्रोध किया या इसलिए मैंने उसको डांट लगाई, और उद्देश्य पीछे कुछ और होता है। उद्देश्य कहीं ना कहीं यह होता है कि उसमें मेरा कुछ लाभ था, उससे मेरा कुछ नुकसान हो रहा था अगर ऐसा ना करता था। तो इस प्रकार भी चीजें घटित होती हैं। तो ये तो अंदर की बात है जो इस प्रकार की करता है, लेकिन नुकसान दे। तो इस प्रकार इंद्र ने भी जो है क्रोधवश, क्यों क्रोधवश, क्योंकि अब अपने आप को कुछ समय के बाद वो भोक्ता मानने लगा था, है भगवान का दास, भगवान ने उसको सेवा दी, लेकिन अब वो अपने आप को ही क्या समझता है, समझता है आई एम द लॉर्ड, मैं भगवान हूं। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि चूंकि देवता सतोगुण से युक्त होते हैं और सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है उसके अंदर बड़े सदगुण होते हैं, लेकिन क्या होगा अपने को स्वामी मानने का मिथ्या अभिमान, क्योंकि सतोगुण भी जो है ये विशुद्ध सत्व नहीं है। सतोगुण में भी व्यक्ति सुख से बदल जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठाओ, वो ये नहीं कहते तमोगुण और रजोगुण से उठ के सतो में रहो, वो कहते हैं कि सतोगुण से भी ऊपर उठो, क्योंकि सतोगुण के अंदर भी बंधन है, सतोगुण के अंदर भी सुख से व्यक्ति आकर्षित होता है और ऐसी परिस्थिति रहती है जैसे कि अब देवता होते हुए भी सतोगुण में रहने वाले लोग भी रजोगुण का प्रभाव आ रहा है और इंद्र के अंदर आया। तो मिथ्या अभिमान आ गया कि मैं ही सब कुछ हूं और ये कौन है जो व्यक्ति इस प्रकार मेरी पूजा के अंदर विघ्न डाल रहा है, और फिर क्रोध आ गया। तो भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि सतोगुण में वो रहते हैं इसलिए मिथ्या अभिमान से बिल्कुल उनके अंदर नहीं आना चाहिए। जब मैं सतोगुण से विहीन उनके मिथ्या अभिमान को भंग करता हूं तो मेरा उद्देश्य उन्हें राहत दिलाना होता है। मतलब भगवान के पनिशमेंट में भी क्या है, उस भक्त का लाभ है। और ये सारी की सारी घटना जो है अपने एक भक्त के अंदर आए विमान को चोर करने के लिए और उसको राहत दिलाने के लिए इतनी बड़ी घटना हो रही है। और इस प्रसंग के द्वारा हम जैसे भक्तों के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं कि कहीं हमारे अंदर वो भोग की, वो लॉर्डिंग ओवर की या भोक्ता बनने की हमारे अंदर तो नहीं आ रही थी, इस प्रकार की कामनाएं। तो इस प्रकार फिर भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को राहत दिलाने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए ऐसी घटना करते हैं। तो यहां पर इतने बड़े बड़े बादलों के द्वारा वर्षा होनी शुरू हुई और पूरे के पूरे वृंदावन के वासियों के लिए मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो गई, त्राही त्राही हो गई, पूरा का पूरा वृंदावन बाढ़ जैसे उसमें आ गया। अब सबको लगने लगा इंद्र कोपित हो गए हैं और उनकी वजह से यह हमारे ऊपर इस प्रकार की विपदा आ रही है। तो सब परेशान हुए, दुखी हुए और सब लोगों ने इस आपदा से बचने के लिए किसका नाम पुकारा, भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान श्री कृष्ण की अब जिम्मेवारी बन गई कि भैया इन्होंने मेरे कहने पर ही तो पूजा वगैरह बंद दी थी और अब जो है इंद्र जो है इसने क्या शुरू कर दिया, अपना खेल शुरू कर दिया, तो मुझे रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान अगले श्लोक में क्या करें, अतएव मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोप समुदाय की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि मैं ही उनका आश्रय हूं, मैं ही उनका स्वामी हूं और वे मेरे अपने परिवार के ही हैं। तो जो लोग भगवान के शरणागत हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं अनन्य चिंत यंतो माम ये जना परिपासते देशानित्य भुक्ता नाम योगक्षेम अभ्या में हो, कि जो लोग मेरे अनन्य भक्त है, अनन्य का मतलब फिर यह हुआ कि फिर किसी और अन्य की शरण में नहीं है। और यहां वृंदावन वासियों को भी वो जो इधर उधर की पूजा करते हैं, भगवान ने कहा नहीं तुम्हें मेरी शरण में आना चाहिए, अर्थात गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो तुम्हें इस प्रकार करना चाहिए, देवताओं की शरण में नहीं रहना चाहिए क्योंकि उससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। जिनकी बुद्धि कम है, जो जिनकी बुद्धि जो है भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, जो केवल छोटा सोचते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने जब भगवान को प्रसन्न किया 6 महीने में कठोर तपस्या करकर और भगवान प्रकट हुए अपने शंख से उसके सर को छुआ और उसने प्रार्थना शुरू करी, तो ध्रुव महाराज ने बोला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं ठीक उस मूर्ख व्यक्ति की तरह हूं जिसने जो राजा के पास गया है, जो राजा जिससे प्रसन्न हुआ है और राजा से वो क्या मांग रहा है, धान के टूटे हुए चावल के अंश मांग रहा है बस कि मुझे ये दे दो, शाम का खाना बनाना है। अरे राजा क्या नहीं दे सकता, लेकिन क्या मांग लिया, क्यों, क्योंकि भौतिक इच्छा हृदय में थी। तो भगवान इस कथा के द्वारा हमें यह भी बताते हैं कि अगर कहीं हमने और किसी का शरणागति ले रखी है, वैसे तो हमने शरणागति अपने अहंकार के लिए रखी है, हम सदैव उसके शरणागत हैं और उसी के अहंकार वश ही सारे काम करते हैं, करता हम इति मन्यते, हर कार्य का हर क्रिया का जो हमसे डिलीवर होती है, जो हम करते हैं उसका लाभ लेते हैं, हम लोग उसका क्रेडिट देते हैं, तो ये फ्रुटेबी मेंटालिटी, और ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म और स्थूल रूप में हर एक के अंदर होती है। इसलिए जब हम लोग सेवा करें या भक्ति करें तो हमारे को मिलने वाली सेवा, हम लोगों को प्राप्त जो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए जो सेवा मिली है, जैसे एक बार बात कर रहे थे कि जब एक बार को दूसरे भक्त से मिलना हो तो क्या पूछना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, है ना, अगर मैनेजर मैनेजर से बोल रहा है तो उसको पूछना चाहिए और प्रभु जी कैसा चल रहा है आपका प्यूरिफिकेशन, कौन सी सेवा पूछना, कौन सी सेवा कर रहे आजकल मंदिर, कौन सा प्यूरिफिकेशन सर्विस मिला हुआ आपको, तो उसको लगेगा अच्छा प्यूरिफिकेशन के लिए था, मैं तो उससे अहंकार कर बैठा था, मैं तो सोचता था डिपार्टमेंट मेरा है, हमारे शुद्धिकरण के लिए। तो इस प्रकार जो भी प्रकार की सेवाएं करता व्यक्ति, तो सूक्ष्म और स्थूल रूप में कहने के उसका क्रेडिट लेने की इच्छा रहती है, और ये सारे के सारे लक्षण मिथ्या अहंकार के लक्षण है। और मिथ्या अहंकार वो पहला लक्षण है जिसकी वजह से ये हमारी गति हुई है, इस संसार में हम आ गए हैं, ये मिथ्या अहंकार के कारण, भोग की इच्छा के कारण और मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण। इतना बड़ा जो है, जिसे बोलते हैं हमारे जीवन का झूठ है ये जीवन, इल्यूजन जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहां पर जन्म दर जन्म आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं उसमें सारे के सारे मिथ्या अहंकार वश जी रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी उससे अलग होकर जीना नहीं चाहते, उससे कुछ अलग नहीं करना चाहते, क्योंकि सब लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, सब लोग मिथ्या अहंकारी हैं, सब लोग भोग के लिए कर रहे हैं, सब लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, सब लोग अपनी सेवा का क्रेडिट लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति जो है उतना ही सीख पाता जितना उसको दिखता है। इसलिए भक्तों की खासकर जिम्मेवारी होती है, भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि आपको जिसकी बुद्धि कहीं पर फिक्स की हुई है मैंने देवी देवताओं की पूजा अर्चना इत्यादि में, आपको उसको डायरेक्टली जाकर छेड़ना नहीं चाहिए, उसको इतना मर जाओ तुम छोड़ो कल से ये कर लो, नहीं, उनके लिए अपने आचरण से सिखाओ उसको, आप इतने अच्छे ढंग से आचरण करो, आप इस प्रकार डिटैच वे में सेवा करो, आप इस प्रकार संसार करो पूरी तरह से अनासक्त, उसको दिखना चाहिए कि अनासक्त होकर भी जिया जा सकता है, उसको दिखना चाहिए कि अनासक्त होकर व्यक्ति कितना खुश है, उसको दिखना चाहिए कि अनासक्त होकर व्यक्ति हर समय आनंद में रहता है, तो जब वो देखेगा कि हाँ ऐसे भी रहा जा सकता है और खुश रहा जा सकता है, तो वो आपको फॉलो करेगा। अभी किसको फॉलो करता है वो? अभी फॉलो करता है हम लोग घर परिवार में बच्चों को जब हम पालते हैं घरों में, तो क्या देखता है बच्चों के लिए? तो रोल मॉडल हम ही, तो देखता है कि जब घर में कोई दुख आता है तो माता पिता दुखी होते हैं, जब पड़ोसियों की झगड़ा होता है तो पिताजी जो है बाजू पर करके लड़ाई करने जाते हैं, जो देखता है कि बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है तो पिताजी जो है कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं, मां हाथ से हटा रही है कि अभी मरने की वो नहीं है जरूरत, वो देख रहा है कि इस तरह के कष्टों में व्यक्ति को किस प्रकार से रिएक्ट करता है वो, तो बच्चा सीखता है, देखता है कि सुबह शाम केवल धन ही सेंटर है हमारे घर का, पिताजी माताजी केवल धन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, धन के विषय में, तो उसको लगता है कि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसा व्यक्ति मंदिर इत्यादि में आता है मेंटल पीस के लिए या कुछ ज्ञान लेने के लिए, तो वहां देखते हैं कि अगर कोई इसको पकड़ के जो मंदिर का भगवान के एकदम नजदीक जो भक्त है वो उसको कह रहा है कि इधर डालो इधर डालो अपनी जेब में डालो, तो उसको लगता है कि अरे ये छीन क्यों रहा है मेरे से, ये मुझे मांग क्यों रहा है और क्या चीज मांग रहा है, ये तो वही मांग रहा है जिसके लिए मैं सुबह से शाम तक परेशान हूं, ये भगवान के इतने नजदीक खड़ा है इसको भी यही चाहिए, तो इसका मतलब मैं सही जगह पीछे पड़ा हूं, सही चीज के पीछे पड़ा, इसकी ज्यादा उपयोगिता है, इसका मतलब अरे भगवान के इतने नजदीक खड़ा उसको भी यही ज्यादा लग रहा है, उसका भगवान भी यही है, उधर वो देख ही नहीं रहा, उधर की जगह इधर डाल रहा है, इधर की जगह उधर रहा है, उसको लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं गलत नहीं हूं अगर मैं 12 घंटे इसके लिए लगा रहा हूं। लेकिन जब ऐसे मंदिर में आता है जहां पर वो देखता है कि नहीं इधर पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो मल के समान है, प्रभुपाद जी को किसी ने धन दिया, भगवान कहते मेरे हाथ में दो उधर ही डाल दो, हमें नहीं चाहिए, जो वो देखते हैं कि यहां पर व्यक्ति अपना जीवन समर्पण करके सेवा कर रहा है, ये जो धन को ठुकरा रहा है, ये इस प्रकार के ऑपरेंस को छोड़कर भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसको समझ आता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिर त्याग। और इस तरह से वातावरण बनता है, लोग मिलते हैं कहते हैं प्रभु जी आप लोगों के मंदिरों में वो सब नहीं होता जो दूसरी जगहों पर होता है, दूसरी जगह पर ऐसा होता है, दूसरी जगह वैसा होता है। तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए, भगवान भगवत गीता में बता रहे कि आदर्श जीवन जब व्यक्ति जिएगा, अनासक्त भाव से जब जिएगा और अपना जो अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार है, उसको किस प्रकार चेंज करेगा सत्य अहंकार से, है ना। रियल ईगो क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, जीव ये स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसको हर समय याद है कि भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, अरे अहम का नहीं हूं, मैं अपने अहंकार का दास नहीं हूं, मैं अपनी भौतिक उपलब्धियों का दास नहीं हूं, मैं अपनी इंद्रियों का दास नहीं हूं, मैं अगर संसार में हूं तो भगवान का दास हूं या भगवान के दासों का दास। इस प्रकार एक जीवात्मा अपने मन वाणी कर्म से जब वैष्णवों की, गुरु की और भगवान की सेवा करता है, तो लोग ऐसे भक्तों को देखकर बदलते हैं, उनको लगता है ऐसे भी जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है। एक भक्त ने एक कागज लिख कर दिया था, उसमें लिखा था प्रभु जी, थोड़ा व्यथित था, व्यथित मतलब परेशान था भक्तों की डीलिंग से, क्योंकि जब लोग मालाएं शुरू करते तो अचानक किसी व्यक्ति ने बोला, मुझे हमने देखा आपके मंदिर में एक भक्ता माला करने वाला, और वो ऐसा था और वैसा था और ऐसा था। मैंने कहा भाई अभी तो माला पकड़ी ही है अपने, अब ऐसे थोड़ी कि जिसने भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली है उसके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तो समझ गया कि हाँ ठीक है अलग अलग स्टेटस है, अलग अलग सर। तो ये हॉस्पिटल है प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां पर सब लोग सुधरने आए, समय लग सकता है। तो उन्होंने लिखा कि आप यहां पर प्रभु शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने देखा कि यहां पर तो कुछ समय के बाद तो प्रभु भी तरह काम करते हैं, ओ इधर ओ ये कर ओ ये सुनो, है ना, अपने को प्रभु मान बैठते हैं, जबकि आप लोग तुमको नाम देते हो कौन सा, दास वाला। तो क्योंकि अभी वो नया है और ऐसे नए नए लोगों के बीच में है अभी, तो उसको लगता है कि यहां पर तो उसको प्रभु बोल दिया इसलिए अपने को प्रभु मान रहा है, जबकि प्रभु शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा है, और हमारी मानसिकता यह रहती है कि वो जो परमात्मा है या वो व्यक्ति जो है हमारा स्वामी है, हम उसके दास हैं, हम उसकी सेवा करें। तो उसको अभी इतनी डेफिनेशन नहीं मालूम चीजों की, इसलिए हम लोग एक दूसरे को प्रभु शब्द से इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार जो ये प्रभुत्व जमाने की या जो अहंकार है, जो इस पर्टिकुलर प्रसंग में आया, जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक व्यक्ति के अहंकार को चूर करने के लिए, इंद्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि 7 साल का बच्चा, मतलब आज तक उसने भगवान का अगर दर्शन भी किया तो चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म के साथ, और अब उनको लग रहा कि ये तो नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी हो सकता कि कोई व्यक्ति छोटा सा बच्चा ऐसा कुछ कर दे, बिल्कुल कन्विंस था कि तो भगवान नहीं हो सकते ना। और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, 7 दिन और 7 रातों तक उन्हें बाएं हाथ के बाएं अंगुली पर, जब उसको खबर पहुंची, जब उसने देखा इंद्र ने, तो क्या हालत हो सकती है, देखिए क्या बुरी स्थिति रही होगी। और फिर उसका जो अहंकार था वो चूर चूर हुआ और भगवान के चरणों में आकर पड़ा। भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों की, क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं, योगा क्षेम यहां मैंने वादा किया है, इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि मैंने अपने भक्तों की रक्षा का व्रत ले रखा है और वो मेरे परिवार के भी है, तो मुझे रक्षा करनी ही करनी है। तो 2 परिवार के लोग मिलते हैं संसार में, एक जिन्होंने असुरों की वृत्ति की उनकी शरण ले रखी है, और दूसरे जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है। जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है, भगवान कहते हैं उनकी रक्षा ना करो। फिर वो रक्षा किस तरह करेंगे, जैसे इंद्र की रक्षा कर रहे हैं, इंद्र को इतना मुश्किल काम दे रखा है संसार का चलाने का, कि आए दिन कोई ना कोई असुर उनके ऊपर अटैक करता है, आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति किसी ने किसी देवता की खुश कर कोई ना कोई हथियार ले लेता है जो इंद्र को परेशान करता रहता है, आए दिन कोई ना कोई खतरनाक तपस्या कर पूरे के पूरे ब्रह्मांड को हिला रखता है, तो इंद्र परेशान रहता है। उसके पास संभालने का जवाब है, सब कुछ करने का जवाब है जो भगवान का दिया हुआ है, तो इन सब व्यथाओं में रहता है विषव। लेकिन कितनी कितनी जगह भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का इस्तेमाल किया देखिए, अन्य भक्तों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, कितनी कथाओं में इंद्र का प्रसंग आता है। और फिर यही इंद्र कितनी बार प्रार्थना करते नजर आता है। तो भगवान अपने भक्तों को समय समय पर इस प्रकार की समस्याओं से बाहर निकालते हैं, और जो कुछ यातना भी देते हैं मान लीजिए, तो उसके पीछे भगवान कह रहे हैं क्या होता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य उन्हें राहत दिलाना होता है, उनकी रक्षा करना होता है। उसको अगर भौतिक बुद्धि से देखेंगे, भौतिक दृष्टि से देखेंगे, या दूसरे लोग उनको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मिला तुझे बता, और बल्ले बत्ती है ना, बोल हरे कृष्णा करता था, हो गया ना। हम लोग बाहर दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से देखना प्रयास करते हैं, अरे देखो पहले वो ये था अब ये हो गया, है ना, देखो कितना अहंकारी था देखा, और लोग प्रसन्न होते हैं, भगवान मना करते हैं साफ सारे, बाबा अगर मेरी भक्ति में लगाओ साधु रहे वो बनते हैं, उसे साधु जानो, कोई बहुत बड़े कुछ नहीं हो गया घर पर, ये तो मैंने उसकी इस चीज को ठीक करने के लिए किया है। तो भगवान रक्षा करते हैं, और भगवान के द्वारा की गई रक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि भगवान के भक्त जो है भगवान से और दृढ़ता से भक्ति की तरफ उनके साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में भी जब कभी दुख या कष्ट आए, या जब कभी हमारे अहंकार को हमारे वरिष्ठ भक्त या हमारे गुरुजन या इस प्रकार उसको ठीक करें, तो गायब नहीं हो जाना चाहिए। आप तो केवल मुझे ही बोलते हो, आपको मेरे अंदर ही गलतियां दिखती हैं, आप उसको तो बोलते नहीं हो, है ना, केवल होता है जैसे घर में शोर मच रहा है, और इतना मतलब शोर मच रहा है कि अब सहन नहीं हो सकता, दो बच्चे बेशक लग रहे आपस में, मां या पिता आखिर किसको इशारा करेंगे चुप होने का, जो ज्यादा सरेंडर होगा, है ना, जो ज्यादा उनको प्यारा होगा या जो उनकी बात मानता होगा, वो उसको इशारा करके बोलेंगे बेटा तुम मान जाओ, वो लेकिन नहीं मेरे पास दो पेंसिल थी, दोनों की दोनों इसने ले ली, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मां क्या बोलेगी, बेटा इसके शोर को बंद करने के लिए ये जरूरी है क्या कि तू चुप हो जाए, तेरे को चार पेंसिल बाद में दे दूंगी, बट अभी इसको दो दे, नहीं बट ये गलत है, हाँ गलत है तो बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, बट अभी शांत हो। उस बच्चे को क्या लगेगा कि देखो वो इतना गंदा, वो इतना लालची, वो उसने ऐसा कर दिया, उसके बाद में किसका फेवर किया है, उसी का फेवर किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या करा था, माहौल को शांत किया, जिस बच्चे ने बात मानी उससे ज्यादा प्रेम हो गया, है ना, उसके प्रति ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई, मतलब अनुग्रह हो गया भगवान ने या माता ने, तो जो बात मानता है उसके ऊपर ज्यादा अनुग्रह होता है, ना कि भौतिक लाभों का, देखिए दो की जगह चार चीज मिलगी, चार की जगह छह चीज मिलेंगी, उसको सही ठहरा दिया, सबने बोला बढ़ गया, तुमने बढ़िया कर दिखाया, कोई फायदा नहीं उसका। इसी प्रकार गुरुजन भी क्या करते हैं, वो देखते जब कहीं कला है, कोई कलेश है, कोई डिस्प्यूट है, कोई मतभेद है, तो जो ज्यादा सरेंडर है ना उनको बोलेंगे तुम शांत रहो, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो कृपा का फ्लो जो है वो उसी मात्रा में बढ़ेगा उस व्यक्ति की तरफ जो व्यक्ति जितना सरेंडर्ड है, नहीं लेकिन वो व्यक्ति तो बिल्कुल महाराज के साथ चिपका रहता है, गुरु के साथ बिल्कुल साथ में रहता है, वो सारी सेवाएं करता है बड़ी बड़ी से, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कृपा को जज करने का। ढोलबा जी कहते थे जैसे एक मच्छर भी तो व्यक्ति का संग लेता है ना, बट वो स्ट्रॉ लगा के सब चूस लेता है, तो वो कोई संग थोड़ी हुआ, वो तो नुकसान कर रहा है चाहे साथ में भी है कि नहीं। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को जब कुछ उनकी ईगो क्रश करते हैं या उनको कुछ स्पेशल पनिशमेंट देते हैं, तो उसका केवल उद्देश्य होगी उनके ऊपर कृपा करना होता है, और दूसरे भक्तों को उस प्रसंग से सीखना चाहिए कि मैं अगर ऐसी परिस्थिति में होता तो मैं क्या करता, अगर ऐसी परिस्थिति मेरे साथ आएगी तो क्या होगा, मैं इसमें भगवान की कृपा देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, कि मैं इसको छोड़ छाड़ के नहीं चला जाऊंगा, मैं नहीं कर रहा कैसे, है ना, ये पड़ा तुम्हारा माला चोली है ना, मैं निकला। तो ऐसे प्रसंग हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, हर क्षण कितनी कितनी घटनाएं तो सुबह से लेकर शाम तक होती है। ऐसा नहीं कि आपको भी कोई एक्स्ट्रा पावर मिलेगी पानी फेंकने की, बादल आएंगे आपकी इच्छा के अनुसार, फिर आपके जिससे आपकी लड़ाई चल रही है उसका पानी गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास दूसरे ढंग से परिस्थितियां आएंगी, हमारे अंदर आएंगे सेवा में क्लैशेस, व्यवहार में दिक्कत है ना, ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी और रोज आएंगे। तो हम लोगों को बादल वाला सीन नहीं चलेगा, पवन पर्वत नहीं उठाते हुए दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। हमारे लिए तो हमारे जो अधिकारी गण हैं, हमारी जो अथॉरिटी है, हमारे जो गुरुजन हैं, उनके मुख से निकले हुए शब्द होंगे, वही पर्वत है समझ लीजिए, वही उनकी कृपा है, हमें तो वो देखना है। तो हम सब इंद्र हैं कहीं ना कहीं, है ना, और कहीं ना कहीं हम लोग अपने अहंकारवश कितनी प्रकार की चीजों से जो है घेरे पड़े। तो इसलिए हर भक्त को चाहिए कि इन प्रसंगों से वो भगवान की, इन प्रसंगों में भगवान की कृपा को देखे और अपने जीवन को उस प्रकार ढालने का प्रयास करे जिससे कि हम लोग भगवान की कृपा के पात्र बने रहे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी भी प्रश्न या जिज्ञासा है? आसक्ति से कैसे बचे, क्योंकि हर चीज में आसक्ति है कि नहीं, हर चीज में, मतलब ये हम जैसे अलार्म सेट करते तो उतने टाइम में बजने ही बजने, आप जब चलते हैं तो पूरी तरह आश्वस्त होते हैं कि ठीक कर पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारी आसक्तियां इतनी नेचुरल हो चुकी हैं, हर चीज से, हर पदार्थ से, हर कर्म करने के फल से, कि कब हम आसक्त है पता नहीं चलता, हर समय आसक्त है। कभी आसक्ति को सोचने का प्रयास कीजिए कि मैं कहां कहां आसक्त हूं, तो आपको लगेगा मैं तो कहीं भी अनासक्त हूं, हिंदी में कहीं, क्योंकि जो चीज मुझे लग रहा है मेरी है, मेरे भोग्य की है, मेरे को फायदा देने वाली है, उसमें कुछ कमी आने पर, कुछ हटने पर, उस सब चीज हमको उसी तरह हृदय में दर्द होगा, पता चलेगा। किसी ने आपको हरे कृष्णा नहीं बोला तो आप परेशान है, आप खाना खा रहे थे पर नमक उतना नहीं डाला जितना, समझ, कहीं ना कहीं हर समय हमारी जो आशाएं हैं बंधी हुई चीजों से, वैसी ना होने पर हमें कष्ट होते ही होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आत्म साक्षात्कार को और सीरियसली लेना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि मैं अपने सेल्फ को पहचानूं कि मैं जिस चीज का बना हूं भगवान का अंश सच्चिदानंद, इस संसार से, जब इस संसार में मुझे शरीर प्राप्त होता है स्थूल और सूक्ष्म देह, तो ये दोनों अपने आप का भार है मेरे ऊपर, और फिर इस देह और इस सूक्ष्म शरीर से जो चीज मैं यहां इकट्ठी करता हूं वो भी और भार है, और मन से मैं जिन जिन चीजों से आसक्त हूं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो भी मन पे भार है। तो इतने भार लेके नहीं चलना चाहिए, ये सारे हमारे दुख के कारण बनेंगे, समझ पा रहे। तो जब कभी हृदय में कुछ भी चुभे, कहीं भी कुछ इनसिक्योरिटी, फियरनेस लगे आपको, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि आप कहने के आ सकते हो, क्योंकि आप सहज नहीं हो, आप सचित आनंद वाली स्थिति में नहीं हो, आप ब्लिसफुल नहीं हो, आपको खुश रहना चाहिए हमेशा। एक व्यक्ति जितना ज्यादा सेल्फ रियलाइज होगा वो उतना खुश होगा, वो उतना आनंदित होगा, और उसके आनंद में कहीं कमी आ रही है तो उसका ऑपरेशन करा दो कि मेरे को ये क्यों हो रहा है, उसकी गहराई में जाओ, फिर आप देखोगे अरे मैं चाह रहा था ये ऐसा हो और ये वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरी आसक्ति के कारण हो रहा है, इसलिए मुझे चाहिए कि मानासक्त हो जाओ, ये तो मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है, मैं प्रयास कर सकता हूं कि अनासक्त हो जाए, लेकिन मैं भार नहीं झेल सकता दुख का, संकट का, इनसिक्योरिटी का, डर का, ये सब मेरी आनंद वाली पोजीशन में बाधा है। इमीडिएट उन्होंने कहा भूल जाओ, कल की बात कर गई, मतलब हर क्षण के बाद फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ खत्म, मेरी किस्मत में नहीं है ना। तो इस प्रकार हम अनासक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। हर चीज पर देखना पड़ेगा हृदय भाई। आपने कहा ना मन को ऐसा हो जाता है, इनसिक्योरिटी होती है, तो नहीं होनी चाहिए ना किसी को भी। आप देखिए जब कभी ऐसा फील हो, दुखी, परेशान, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, डर, ये होने नहीं चाहिए। क्यों है? आपकी जड़ में जाओ ना, आप असक्त हो कहीं ना कहीं। और आप असक्त क्यों? क्योंकि आप इसका मतलब हम वो हो क्या देहात की बुद्धि के लेवल पर होगी, तो छोड़ो उसको। हम कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे, वो भी करना है, लेकिन कैसे? जैसे भगवान ने बताया अनासक्त भाव से करो। तुम कर्म करने का अधिकार दिया मैंने, तुम तो उसके फल का अधिकार भी मांग रहे हो। ये समस्या हमारे साथ। हम कहते हैं भगवान ने कहा कर्म ही पूजा है, और कर्म का अधिकार है, तो कर्म के अधिकार से के साथ साथ हम फल का अधिकार और साथ जोड़ लेते हैं कि फल का अधिकार भी हमें दो। भगवान कहते नहीं, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तो इतना सुंदर ज्ञान है, एक ही सेंटेंस में भगवान ने व्यक्ति को अनासक्त कर दिया। भाई तेरा अधिकार ही नहीं तो तुम अटैच हो रहे। अनासक्त होइए, आनंद में रहिए। क्रोध को कैसे कंट्रोल? भगवत गीता में भगवान बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं, दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में, कि ये हमारी जिन चीजों से आसक्ति हो चुकी होती है ना, जैसे गुरु जी बोल रहे हैं, और वैसा फल ना मिलना मिलता नहीं है, तो फिर क्रोध आता है। तो हमने बताया कि जो इनसिक्योरिटी, संकट, डर, भय, क्रोध, ये सारे के सारे अवगुण तभी आते हैं जब हम देहात बुद्धि के स्तर पर होते हैं। और देहात बुद्धि के स्तर वाला व्यक्ति इतना मतलब निकृष्ट है, वो हमेशा हर प्रकार के अवगुणों से घिरा हुआ है। अब सोच कर देखिए, जो देहात बुद्धि के स्तर पर है वो क्रोधी भी है, वो कामी भी है, वो लोभी भी है, वो संकट में भी है, वो फियरफुल भी है, वो सारे के सारे अवगुण उसको घेर कर रखेंगे। जैसे एक व्यक्ति का मच्छर मंडरा रहता है ना, तो वैसे घिरा पड़ा है वैसे। और हर चीज को ज्ञान के स्तर पर देखे, हर समय याद दिलाने का प्रयास करें कि मैं चिन्मय जीव हूं, आध्यात्मिक जगत से आया हुआ आत्मा, भगवान का अंश, जो इस संसार में किसी भी प्रकार की चीज से डिस्टर्ब नहीं हो सकता, लेकिन मैं हो रहा हूं तो मेरी गलती है। समझ पा रहे? जैसे कि आप यहां बैठे हैं अभी, अब आप किसी स्कूल में चले जाए, आप देखो किसी की टीचर नहीं है, यहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, अब परेशान हो गया, अभी क्या है ऐसा हो गया, या काम ही नहीं था, अब ऐसे वहां जाकर परेशान हो गए। समझे? उसी तरह हम लोग अध्यात्मिक जगत के चिन्मय जीव हैं। यहां पर आके जिन चीजों से भी दुख, तकलीफ और परेशानी हो रही है, वो हमारा बिजनेस ही नहीं है। मतलब हमेशा याद दिलाना पड़ेगा आपको कि मैं क्या हूं, है ना? जब जब मैं भूलूंगा तो हर चीज होगी फिर मेरे साथ, क्रोध भी आएगा। इसलिए अनासक्त रहिए, सोच के रखिए कि मेरी किस्मत में होगा तो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा तो नहीं है। हरे अच्छा, ऐसा करते हैं, उस समय शांत रहिए। अगर सामने वाले को क्रोध आ रहा है, अगर आप कुछ भी बोलेंगे, अगर कोई ऐसे शब्द बोलेंगे जो कि उसको अच्छे नहीं लग रहे, तो उसका क्रोध बढ़ता जाएगा, साथ में आसमान पे चला जाएगा। तो ऐसे अवस्था में शांत रहना बहुत जरूरी रहता है। दूसरा, आप शांत है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं लक्ष्मण की तरह, तो वो क्रोध बढ़ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, है ना? तो वो उस तरह का शांत भी नहीं चाहिए। शांत का मतलब यह है कि उसकी फेवरेबल शांत, उस समय उसको शांत करने के लिए वो जो चाहता वैसा कर लिया, उससे थोड़ी ना थोड़ा शांत कर दिया, माँ को रास्ता उस स्थान को छोड़ के चले गए, है ना? हाथ जोड़ लिए, माफी मांग ली, अच्छा क्षमा कर दो, गलती हो गई, आपकी गलती नहीं है, बट फिलहाल मांग लो, थोड़ी देर शांत होंगे सब कुछ होगा, फिर दोबारा आके बात कर लेना। अब बोलना जरा क्या कह रहे थे? ऐसे नहीं बोलना, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। श्री प्रभुपाद की निताय है।